Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس خطبے اور دعاؤں کے ساتھ ہم آج کا شروع کرتے ہیں. جو آیات پڑھی گئیں یہ ہم نے کل بھی پڑھی تھیں, انہی کا ترجمہ خلاصہ تفسیر ہم نے مکمل کیا تھا کل پڑھ کے, اور اس میں بہت سارے نکات پہ بات ہوئی تھی جن کو کہ ایک خلاصہ تفسیر میں مطلب بلکہ ایک اہم نکات کا میسج بنا کر کے بھی آپ لوگوں کو بھیج دیا تھا واٹس ایپ گروپ کے اوپر. جو بھی حضرات اور خواتین اس پوری کلاس کے منعقد کرنے میں اور اس کے خلاصہ لکھنے میں اور اس کے دیگر انتظامات کے اندر تعاون کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو اپنی محبت کے بدلے قبول فرمائے اور ان کو بہترین دنیا اور آخرت کی جزائیں عطا فرمائے, اور جو باقی ان سے ان کی ان محنتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی اور اس علم کو اپنے عمل میں اخلاص کے ساتھ لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. معارف و مسائل ہم شروع کر لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو ہم نے پچھلی کلاس کے اندر ایک بات کہی تھی کہ ہم آج کی کلاس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ بات کریں گے کہ جو دین کی مدد کرنے کا ٹاپک تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ, اور ضرور بال ضرور لام تاکید کے لیے ہوتا ہے, جس کو کہ اردو میں ترجمہ کریں تو ضرور بال ضرور, ٹھیک ہے, يَنصُرَنَّ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ضرور بال ضرور مدد کرے گا, ہے نا. جو صرف پڑھ چکے ہیں عربی گرامر کے اندر, جو صرف کی کونجوگیشن کی جو سائنس ہوتی ہے, تو وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہاں پر لام تاکید با نون ثقیلہ, لام تاکید با نون ثقیلہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے, لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ, ہے نا, نون جو ہے وہ تشدید کے ساتھ جو آتا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ ڈبل ایمفیسس ہو جاتا ہے. لام تاکید سے تو ایک ایمفیسس ہوتا ہے اور نون ثقیلہ سے یعنی بھاری والے نون سے ڈبل ایمفیسس ہو جاتا ہے تاکید. تو فرماتے ہیں مَن يَنصُرُهُ, جو بھی اس کی مدد کرے گا, ٹھیک ہے, ضرور بال ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا, ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر ایک تو تفصیل ہم نے یہاں پر پڑھ لی, آیت نمبر پوچھ رہے ہیں تو آیت نمبر ہے 39-41 سورۃ الحج کی, 39-41 معروف القرآن کے پیج نمبر 269, ٹھیک ہے. تو ایک تفصیل تو ہم نے پڑھ لی کہ جی اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا, اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے رسول کی مدد کرنا, اللہ کے رسول کی مدد کرنا, جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریون سے کہا تھا نا کہ من انصاری الی اللہ, کون میری مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر, ٹھیک ہے, کون میری مدد کرتا ہے. تو نبیوں کو, نبی جو ہے وہ باقاعدہ مدد کے لیے لوگوں کو پکارتے تھے, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ان کو اللہ کے اوپر توکل نہیں تھا اور جو ہے وہ اللہ کی مدد ان کے لیے کافی نہیں تھی, ان کو انسانوں کی بھی مدد کی ضرورت تھی, نہیں, بلکہ نبیوں کا معاملہ جو ہے نا جب آتا ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ اپنی ہوا سے, اپنی جو جو ذاتی خواہش ہوتی ہے نا اس کی بنیاد پہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی ہرس و ہوا سے، اپنی خواہش سے باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں. ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے یہ اتھارٹی ہوتی ہے، اور وحی کا سلسلہ ہوتا ہے، علم کی اتھارٹی ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے، تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی اتھارٹی سے بات کرتے ہیں، اسی وجہ سے، ٹھیک ہے، اللہ کی سند کے ساتھ بات کرتے ہیں، دیوی سند کے ساتھ. تو انہوں نے جب کہا من انصاری الی اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے ہی کہا، اپنی طرف سے نہیں کہی یہ والی بات، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے تو پکارتے ہی ہو، رات کو اٹھ کر کے تہجد کے اندر نماز پڑھتے ہو، مجھے پکارتے ہو، دن کے اندر تم دعائیں کرتے ہو، مجھے پکارتے ہو، لیکن اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں انسانوں کو بھی پکارو، مخلوق کو بھی پکارو، اپنے اصحاب کو بھی پکارو، ٹھیک ہے. تو نبی کو، نبی نے مدد کے لیے پکارا نا، ٹھیک ہے نا. تو اب نبی جب، یعنی دین کی مدد کیا؟ نبی کی مدد، ٹھیک ہے نا، دین کی مدد کیا؟ نبی کی مدد. اب جب نبی دنیا سے گزر گئے، نبی پردہ فرما گئے، زمین کے اوپر سے وہ زمین کے نیچے چلے گئے، اپنی قبروں میں چلے گئے، ٹھیک ہے نا. کسی کو شک ہے کہ نبی قبروں میں نہیں گئے، ابھی بھی زندہ ہے نا. وہ ایک دو نبی جو ہے جن کا زندہ ہونے کا، خضر علیہ السلام، وہ بھی جو ہے وہ یعنی اختلافی امر ہے کہ ابھی تک وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر ہیں بھی زندہ تو وہ یہ والا کام کوئی تھوڑی کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ والا کام کوئی تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو اپنا ایک دوسرا قسم کا جو کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تکوینی امور جو ہیں وہ والے نبی تھے وہ تو ویسے بھی، ٹھیک ہے نا. تو اب تو سارے نبی جو ہیں وہ تو زمین سے نیچے چلے گئے نا، تو اب کیسے مدد کریں دین کی؟ اب کیا مدد ہے دین کی؟ اب نبی کے جو ورثاء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ٹھیک ہے نا، ان کی مدد کرنا، ٹھیک ہے. کیونکہ وہی وہ والا کام کر رہے ہیں جو کہ نبیوں نے کیا، ٹھیک ہے. کوئی غیر عالم، یعنی جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے وہ شریعت کا علم نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے وہ تزکیہ نفس کا علم نہیں ہے، تصفیہ قلب کا علم نہیں ہے، ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کام لے کر کے آئے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کام لے کر کے آئے تھے؟ قرآن کی، یتلو علیہم آیاتی ہی، قرآن کی آیات کی تلاوت، یعنی تلاوت کرنے کا علم، کیسے تلاوت کی جاتی ہے، رائٹ، قراءت کا علم، ٹھیک ہے نا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم میں سے ایک علم ہے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کر کے دوسروں تک قرآن مجید کی تلاوت پہنچاتے ہیں. یعنی قرآن مجید کی کیا 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 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر، ویزکیہم، اور تزکیہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی تزکیے کا جو علم ہے یہ بھی نبوی علم ہے، علم نبوت ہے یہ، تزکیے کا علم، کہ بھئی آپ اپنے نیتوں کو خالص کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں، اپنی روحانی بیماریوں کو، شہوت، غصہ، تکبر، حرص، حسد، ان ساری روحانی بیماریوں کا کیسے علاج کرتے ہیں، یہ تزکیے کا علم ہے، اور یہ بھی علم نبوت میں سے ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کے معنی و مفہوم، معارف و مسائل، تفسیر، اور اس تفسیر کے اندر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال مبارکہ، حدیث، اور صحابہ کرام کی جو آثار ہیں صحابہ کرام کے، ٹھیک ہے. اس قرآن کے علم کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، تو یہ بھی علوم نبوت میں سے شامل ہے. والحکمہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، کہ کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے، کہ وہ بہترین وزڈم کے طریقے کے اوپر وہ کام ہوتا تھا، میکسیمائز کرتے تھے ہر چیز کے اندر میکسیمم پروفٹ حاصل کرنا، اسی کو سنت کہتے ہیں. دی بیسٹ وے آف ڈوئنگ سم تھنگ از کالڈ سنت، اور یہ سنت ہمیں کہاں سے ملی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ سے، ٹھیک ہے نا. دی بیسٹ وے آف ڈوئنگ سم تھنگ، ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو علوم ہیں، ان علوم کو کس نے ورثے میں لیا؟ کسی سیاستدان نے ورثے میں لیا، کسی کھلاڑی نے ورثے میں لیا، ہے مسلمان کھلاڑی ہیں، مسلمان سیاستدان ہیں، یا کسی مسلمان انجینئر نے ورثے میں لیا اس ان ان علوم کو، کسی مسلمان فزیکل ڈاکٹر نے بھی ورثے میں نہیں لیا، کس نے ورثے میں لیا، کس نے جو ہے وہ اس کو انہیرٹ کیا؟ علماء کرام نے، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں اس علم کو سمجھنے میں، سیکھنے کے اندر، ٹھیک ہے نا. بے شک ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے کوئی اور ڈگری بھی حاصل کر لی ہو، या साथ साथ कोई और डिग्री हासिल करी हो, लेकिन उनका जो मेन फोकस है वो यही उलूम है। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कपड़े के ताजर थे, ठीक है ना, कपड़े के ताजर थे, ये यानी ये उनका असल जो था वो जरिया मुआश कपड़े की तजारत थी। लेकिन उन्होंने फिर इस इल्म के अंदर इतना ज्यादा एक्सेल कर लिया कि वो फुकहा के भी इमाम बन गए, इमाम आजम बन गए, ठीक है। तो कोई शख्स जो कि बचपन से इल्म हासिल कर रहा है जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, या कोई शख्स बाद में जाकर के जो है वो इस इल्म के ऊपर फोकस करके इसको हासिल करता है, तो जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, तो ये सब जो है ना वो दीन के उलमा कहलाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह नबी की मदद उनकी जिंदगियों में थी जो कि अल्लाह की मदद की जमानत बनती है, वही उसी तरीके से नबियों के वरसा की मदद, ठीक है। अब जो है वो सवाल ये था कि जी हम जो नबियों के वरसा यानी उलमा की मदद जो है वो हम कर क्यों नहीं पा रहे होते जैसा कि हमें करना चाहिए, या जैसा जिसके करने से जो है वो हमें अल्लाह ताला की मदद हासिल हो जाए, है ना। क्योंकि अल्लाह ताला ने जबरदस्त किस्म की ताकीद के साथ ये फरमाया है कि वला यंसुरनल्लाहु मन यंसुरुहु, है ना, अल्लाह ताला जरूर बिल जरूर मदद करेंगे, करते हैं, करेंगे। ये है भी कौन सा सीगा, प्रेजेंट टेंस एज वेल एज फ्यूचर टेंस, है ना। फेले मुजारे का सीगा सब जानते हैं अरबी पढ़ने वाले कि फेले मुजारे के अंदर इस्तिमरार है, करार है, यानी ये सिर्फ ये नहीं कि अभी मदद कर रहे हैं बल्कि नहीं मुस्तकबिल में भी मदद करते रहेंगे, मुस्तकबिल में भी मदद करते रहेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या जो है ना वो हमें यानी रुकावटें बन जाती हैं, किस वजह से हम ये काम नहीं कर पाते, तो इसका जो है वो सवाल हमने काफी यानी स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था, और उनमें से काफी स्टूडेंट्स ने जवाब लिख करके भी हमें वापस भेजा, ठीक है। तो इरादा तो था कि सबके जवाब जो है वो एक दफा बैठ के स्टडी करेंगे और सबके जवाबों को जो है वो यहाँ पे एक तरह से उनका एक समरी बना करके आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन इसका तो बिल्कुल ही मौका हाथ नहीं आया, ठीक है। बड़ी नीयत करके बैठे हुए थे लेकिन नहीं कर सके ये। लेकिन जब लोगों ने मैसेज यानी जवाब लिखे थे तो उस वक्त तो हमने पढ़े थे, सबके जवाब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो हैं, तो प्रीटी मच जो मेरे जहन में एक एक, 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 एक वो बना हुआ है ना खाका के जब के सबके जवाब क्या आए थे, तो उसमें यही था यानी अंडरलाइंग उसका थीम यही था कि जी हम यानी उलमा को इस काबिल नहीं समझते कि हम उनकी मदद करें वगैरह, ठीक है। तो वो भी जवाब सही है, लेकिन हम यहाँ पर जो सवाल कर रहे थे ना वो ये था कि जिनको हम अहमियत देते हैं, जिन उलमाए कराम को हम उलमाए हक समझते हैं, मानते हैं कि वो उलमाए हक हैं, यहाँ पे उन उलमा की बात नहीं हो रही जो कि उलमाए सू होते हैं, जो कि अपने दीन को दुनिया के एवज बेच देते हैं, दीन को खराब कर देते हैं, इल्म हासिल करने के बावजूद वो दीन को खराब कर देते हैं, वो उलमाए सू होते हैं, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। हम तो यहाँ पर सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं कि जिनको के हम उलमाए हक समझते हैं और उनके ऊपर हम जो है ना वो यानी एक अच्छा उनके साथ अकीदत वाला भी और अच्छी खासी जो है ना वो मोहब्बत की आहें भरने वाला, आंसू बहाने वाला भी हमारा उनके साथ मामला होता है, हम उनकी भी क्यों नहीं मदद कर पा रहे होते, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे किसी ने लिखा अकल परस्ती और उलमा के खिलाफ नफरत की मुहिम का असर लेना बल्कि उसका हिस्सा भी बन जाना। हाँ, मदद इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो अकल परस्ती का जो एक मुहिम है, इन्होंने एक जवाब दिया है तो वो आज पढ़ रहा है कि अकल परस्ती और उलमा के खिलाफ नफरत की जो मुहिम है ना तो उसका हम असर लेते हैं, ठीक है, बल्कि हम उसका हिस्सा बन जाते हैं, यानी बाकायदा हम खुद जो है ना वो अकल परस्ती को प्रमोट करना शुरू हो जाते हैं और जो है वो उलमा के खिलाफ प्रोपेगेंडा खुद करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे होते, लेकिन हम यहाँ पे हमारा सवाल इस पर है ही नहीं। हमारा सवाल तो उन लोगों से है कि जो कि उलमा के खिलाफ जहर नहीं उगल रहे हैं, उलमा के खिलाफ जहर नहीं उगल रहे हैं और अकल परस्ती को कम अज कम वर्बली, कम अज कम जुबानी तौर पर अकल परस्ती के खिलाफ है ना। बेशक अमलन जो है वो हम भी अकल परस्ती कर रहे होते हैं लेकिन कम अज कम इसको बुरा समझते हैं, फिर भी हम क्यों नहीं मदद कर पा रहे होते हैं। ठीक है, देखिए उसकी चंद वजूहात जो है ना वो ये बनती हैं, ऐसे लोगों के लिए जो कि उलमा को मानते हैं और उलमा की सुनते हैं, यानी उलमा को सुनते हैं, की सुनना एक अलग चीज होती है, को सुनना एक अलग चीज होती है, तो उलमा को सुनते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह ये बनती है कि कुछ हमसे ना गलतियां हो रही होती हैं इसके अंदर, इस मामले के अंदर। ठीक है, वो गलतियां ये हो रही होती हैं कि ये जो दीन का काम है ना, जिसके अंदर उलमा को मदद की जरूरत होती है या नबी को भी मदद की जरूरत होती है, ये क्या काम है, ये काम है क्या? ठीक है, ये काम जो है ना वो ये नहीं है, ये नहीं है ये काम कि आप किताब पढ़ें, कोई किताब पढ़ें है ना, जिसके अंदर जो है वो आमाल लिखे हुए हों। ठीक है ना, आप कोई किताब पढ़ें जिसके अंदर के आमाल लिखे हुए हों, और उन आमाल को आप पढ़ पढ़ करके जो है ना वो अपने अमल में लाना शुरू कर दें। ठीक है ना, ये हमारी तारीफ दीन की क्या है, हमारी तारीफ दीन की यही है कि दीन की किताब पढ़ना, ठीक है, और दीन की किताब पढ़ करके उसके अंदर से जो हमें चीजें मिल रही हैं उनके ऊपर जो है ना वो अमल करने की एक कोशिश शुरू कर देना। ठीक है ना, ये उससे तो बेहतर है कि जी दीन की किताब ही नहीं पढ़ रहे और जो है वो अमल की कोई कोशिश ही नहीं कर रहे, उससे तो ये बेहतर है, लेकिन ये नहीं है दीन। ठीक है, कि किताब पढ़ा और उसके ऊपर जो है वो अमल, जैसे आपने हज की किताब पढ़ी और उनका अच्छा जी मुझे हज करना चाहिए, अब आपने हज की जो है वो तैयारियां वैयारियां करनी शुरू कर दी और आप जो है वो एक दिन हज में पहुंच गए। ठीक है ना, तो भाई ये दीन का एक अमल आपने कर लिया। उम्रे की आपने जो है वो किताब पढ़ी, उसके अंदर उम्रे के फजाइल पढ़े, ठीक है ना, फजाइल आमाल टाइप की कोई चीज आपने पढ़ी और आपके अंदर शौक हो गया अच्छा जी मुझे वाला ये वाला अमल करना चाहिए, और आपने जो है ना वो उसके बाद फिर उम्रे करने शुरू कर दिया। अगर सऊदी अरब में रहते थे तो हर हफ्ता करना शुरू कर दिया, और अगर बाहर रहते थे तो हर महीना करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जो दीन है ना ये कहलाता है किताबी दीन। ठीक है, कि किताब पढ़ी, किताब से जो बात समझ में आई उसके ऊपर जो है वो अमल करना शुरू कर दिया, ये किताबी दीन कहलाता है। ठीक है ना, हमारा जो दीन है ना वो दरअसल किताबी दीन है ही नहीं, हमारा दीन किताबी दीन है ही नहीं, हमारा दीन जो है ये सुहबती दीन है। ठीक है, सोहबत जो होती है ना वो किताब की सोहबत नहीं होती कि जी किताबों को चारों तरफ आपने अपनी लाइब्रेरी के अंदर सजाया हुआ है और आप उनकी सोहबत के अंदर जो है वो बीच में बैठे हुए हैं, तो क्या मतलब आपको दीन की सोहबत हासिल हो गई, क्योंकि दीन जो है वो किताबों में था और किताबें आपने चारों तरफ जो है वो दीवारों पर सजाई हुई है और आप उनके बीच में बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि आपको दीन की सोहबत हासिल है। नहीं, सोहबत जो है वो जिंदा इंसानों की होती है। ठीक है ना, ये कब्रों वालों की भी सोहबत नहीं होती, जो कब्र में लेटे हुए आप कब्रिस्तान में जाकर के बैठ जाएं, ठीक है ना, कि जी मुझे तो अल्लाह वालों की सोहबत मिल गई क्योंकि मैं जो है वो अल्लाह वालों के कब्रिस्तान बैठा हूँ, जन्नतुल बकी मिसाल के तौर पर सबसे बेहतरीन, इससे बड़ा कोई कब्रिस्तान हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो आप सहाबा के कब्रों के बराबर में जाके बैठ गए, अच्छा जी मुझे सहाबा की सोहबत हासिल हो गई, क्या मतलब? ऐसा कभी आपने सुना, कभी आपने सोचा, कभी किसी ने आपसे ये बात कही कि आप जन्नतुल बकी में जाकर के जो है वो सहाबा की सोहबत हासिल कर लेंगे, आप ताबई बन जाएंगे? नहीं, ये तो ये सोहबत ऐसे नहीं हासिल होती ना, ना सोहबत किताबों से हासिल होती है, ना सोहबत जो है वो कब्रों से हासिल होती है। हाँ, किताबों से आपको इल्म हासिल हो जाता है, क्या चीज कैसी है क्या नहीं है वगैरह, फैक्ट्स एंड फिगर्स का इल्म कब्रों से भी आपको एक सोर्ट ऑफ बरकत हासिल हो जाती है, क्योंकि हमारा जो अहले सुन्ना वल जमात का अकीदा है वो ये कि कब्रों के अंदर पत्थर नहीं पड़े हुए, ठीक है ना, कब्रों के अंदर बाकायदा जिंदा दिल मौजूद है, तो उनका भी एक असर होता है, लेकिन उससे दीन की सोहबत हासिल नहीं हो जाती। ठीक है, तो दीन की सोहबत तो इंसानों से हासिल होती है जो कि जिंदा इंसान होते हैं। ठीक है, तो इस दीन की मदद करने का मतलब क्या कि सिर्फ कि यानी किताबों की मदद नहीं करना कि जी जैसे कि है ना ये किताबों की जो है वो आपने प्रिंटिंग करवा दी बहुत सारी, है ना, कोई किताब आपको पसंद आई, आपने जो है ना वो जाकर के प्रिंटिंग प्रेस के अंदर पैसे दिए और आपने वो किताब दी और कहा कि जी इस किताब को जो है ना आप एक एक 1,000 कॉपियां और छाप दें। ठीक है ना, 1,000 कॉपियां और छपा ली और उनको जो है वो मस्जिद के बाहर खड़े होकर के आपने बांटना शुरू कर दिया, हाँ भाई दीन की मदद हो रही है। ठीक है ना, यानी किताब को की छपवाने में आपने अपना यानी अपना हिस्सा डाल दिया और ये जो है वो दीन की मदद हो गई। ठीक है ना, पुराने जमाने में किताब छपवाने वाला तरीका होता था। आज के जमाने में अब किताबों का जमाना गुजर गया, तकरीबन गुजर गया, पूरा तो नहीं गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तकरीबन। एक हमारे एक हजरत के बल के बैठे हैं, तो उन्होंने अपना एक मजमून भी लिखा कि और किताब मर गई। ठीक है, और किताब मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि अब हर चीज जो है वो पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपके पास इंटरनेट पे मौजूद है, ठीक है, सोशल मीडिया मौजूद है। तो अब जो है वो ये दीन की मदद जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है, ठीक है, कि भाई यहां से चीज सुनी और उस चीज को आगे फॉरवर्ड कर दिया, यहां से चीज सुनी उसको जो है वो आगे वायरल कर दिया, तो ये दीन की मदद हो रही है। नहीं, ये दीन की मदद नहीं होती है, ठीक है ना। दीन की मदद का तरीका तो वही है जो कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से चला आ रहा है, यानी दीन वालों की मदद। उस जमाने में किताबें होती थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किताबें नहीं होती थी, किताबें होती थी, लेकिन दीन की मदद जो है वो इंसानों की मदद करना समझा जाता था। और आज भी किताबें होती हैं, इंसान भी होते हैं, लेकिन दीन की मदद जो है वो इंसानों की मदद करना समझा जाता है, ठीक है। तो अब जो है ना, दीन की मदद जो है वो हमने इन अकली दलाइल के जरिए से और नकली दलाइल के जरिए से इस बात को प्रूव करने की कोशिश करी है कि जी इंसानों की मदद करना, यानी उलमाए कराम की मदद करना, ठीक है। तो अब ये जो उलमाए कराम का जो काम है, जिसके अंदर हमें मदद करनी है, वो काम क्या है कि दीन की हिफाजत करना और दीन की इशाअत करना। दीन की हिफाजत करना चोरों डाकुओं लुटेरों से, ठीक है ना, यानी जो मुल्हिदीन और यहूद और नसारा जो आपके दीन के अंदर खराबियां डालने की हर वक्त फिक्र के अंदर लगे रहते हैं, उनसे इस दीन की हिफाजत करना और इस दीन को जो है वो इशाअत करना, यानी अल्लाह के बंदों तक इस दीन को सही शक्ल में पहुंचाना, ठीक है। अब ये जो काम है ना, ये असल काम है, ये असल काम है, ठीक है ना। और जो बाकी काम उलमा के कर उलमा जिन कामों की जरूरत पड़ती है, वो इन कामों की सपोर्टिव काम है, सपोर्टिंग काम है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर उलमा को जो है वो दीन की हिफाजत करनी है, ठीक है, तो अब दीन की हिफाजत करने के लिए उनको जो है वो किताबों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो किताबों को उलमा तक पहुंचा देना, ये एक सपोर्टिंग काम है, ठीक है ना। भाई आलिम को दीन को समझने में और दीन को जो है वो प्रिजर्व करने में जिस कागज की जरूरत है, जिस पेंसिल की जरूरत है, जिस कलम की जरूरत है, जिस जो है वो टेबल की जरूरत है जिस पर बैठ करके, या कोई ऐसी कोई मसनद वगैरह, या कोई ऐसा मदरसे की इमारत वगैरह, ये चीजें जो उसको चाहिए हैं ताकि वो दीन की हिफाजत का काम कर सके, मदरसे की बिल्डिंग, मदरसे के अंदर बिजली, ठीक है, मदरसे के अंदर जो है वो पानी का इंतजाम, खाने का इंतजाम वगैरह, ये सारे इंतजाम जो हैं ये सपोर्टिव एक्शंस कहलाएंगे, सपोर्टिंग इकदाम कहलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन असल काम किया है दीन की हिफाजत का, दीन की हिफाजत का असल काम जो है वो तो आलिम से इस दीन के उलूम को सीखना, ठीक है, और है ना अच्छे से सीखना, ठीक है ना, यानी खुद जो है वो दीन का इल्म हासिल करना। असल काम तो ये है ना दीन की हिफाजत के लिए, बाकी काम भी काम है लेकिन वो लोअर लेवल के दर्जे के काम है, ठीक है ना। उसी तरीके से दीन की इशाअत के लिए, दीन की इशाअत के लिए आलिम को जिन चीजों की जरूरत है, ठीक है ना, जैसे कि एक लाउड स्पीकर की जरूरत है। पुराने जमाने में एक लाउड स्पीकर था, उसके जरिए से वो जो है वो बयान किया करते थे, तो लाउड स्पीकर का इंतजाम करना, स्पीकर सिस्टम जिसको आजकल कहते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से आलिम को जो है वो सफर करके जाना, ठीक है ना, कहीं पे उसने जाना है दीन की इशाअत के लिए, तो कैसे जाएगा, उड़ के तो नहीं जाएगा ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उसके पास नहीं आएगा ना कि जी जो उसको बिठा करके ले जाए वहां पर, बुर्राक तो नहीं आएगा ना उसके पास, तो उसको जो है वो किसी सवारी की जरूरत है, ठीक है ना। तो उसको जो है वो सवारी मुहैया करना, ठीक है, सवारी मुहैया करना, उसके लिए सवारी के लिए जो है वो दाने पानी का इंतजाम करना, जिसको के पेट्रोल आजकल कहा जाता है ना, रेडिएटर का पानी कहा जाता है, और गाड़ी की जो है वो मेंटेनेंस कही जाती है, ठीक है। तो ये सारे काम जो हैं उसको दीन की इशाअत के अंदर सपोर्टिव काम कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन दीन की इशाअत का असल काम क्या है, असल काम क्या है दीन की इशाअत का, ये चले आप बताएं जब तक हम आपके भेजे हुए मैसेजेस पढ़ते हैं। देखें, दीन की हिफाजत के अंदर एक है सपोर्टिव काम, ठीक है ना, और एक है असल काम हिफाजत के अंदर। उसी तरह दीन के इशाद के अंदर सपोर्टिव काम क्या कि हमने आपको मिसाल बता दी, ठीक है, कि दाना पानी का, सवारी के दाना पानी का इंतजाम करना, और जो है वो पहुंचाना, लाउड स्पीकर, स्पीकर सिस्टम, और जो है ना वो दरी वरी, है ना, ये सारे काम, ठीक है ना। लेकिन दीन के इशाअत का असल काम क्या है, ठीक है ना, ये हम आपसे सवाल कर रहे हैं। लोगों को ये बताना कि हमें उलमा की सोबत से ये फायदा हासिल हुआ है, उन्हें उलमा से जोड़ने की कोशिश करें, खुद सही से दीन सीखना और आगे बढ़ाना, दीन को सीखना। असल काम क्या है? दीन का इल्म हासिल करना। दीन का इल्म हासिल करना जो है ना, वो दीन की हिफाजत के कॉन्टेक्स्ट में हम कह चुके हैं, ठीक है, दीन की हिफाजत के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, यानी जो दीन के अकायद हैं, जो दीन के मसाइल हैं, तो उनको जो है ना वो आपने सही सही उनसे सीख लिया, ताकि कोई आपसे पूछे तो आप उसको बता सके, ठीक है ना। खुद अमल करके दिखाना, मिसाली बनना, नहीं, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, लोगों को उलमा से जोड़ना, लोगों को उलमा से जोड़ना, लोगों तक दीन का सही पैगाम पहुंचाना। देखें, ठीक है, ये सारी बातें भी हैं, इनका इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये सारी बातें भी मौजूद हैं, लेकिन देखें जो असल काम है ना दीन की नशर व इशाअत के लिए, ठीक है, वो काम जो है वो उस आलम हक ने करना है, ठीक है। और ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सबसे ज्यादा यानी डेलिकेट काम है, ये डेलिकेट समझते हैं, बहुत ही नाजुक काम है, नाजुक नॉट इन द सेंस कि जी जिस तरह से आप गीने शीशे के बने हुए कोई बर्तन जो है वो बड़े नाजुक होते हैं, बड़ी आसानी से टूट जाते हैं, ये वो वाला नाजुक नहीं, बल्कि नाजुक का मतलब जो है वो बहुत ही यानी जिसकी बहुत ज्यादा ना हिफाजत करने की और बहुत एहतियात से जिस चीज को, ठीक है, डेलिकेट का लफ्ज क्या होता है, हैंडल विथ केयर, डेलिकेट आइटम्स इनसाइड, है ना, होता है वो जो कार्टन्स के ऊपर लिखा होता है ना, जिनके अंदर जो है वो शीशे की चीजें होती हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर लिखा होता है ना, हैंडल विथ केयर और डेलिकेट आइटम्स इनसाइड, ठीक है ना। तो ये दीन का जो फैलाने का काम है ना, ये इंतहाई डेलिकेट और इंतहाई हैंडल विथ केयर करने वाला काम है, ठीक है। अब इस काम के अंदर उनका मुआविन बनना क्या मतलब, उनका नायब बनना, उनका नायब बनना, उनका रिप्रेजेंटेटिव बनना, ठीक है, ये कैसे बने हम कि हम दीन के काम के अंदर उनके रिप्रेजेंटेटिव बन सके, दीन के काम के अंदर हम उनके नायब बन सके, ठीक है। देखिए, सपोर्टिव काम हमने बता दिया आपको, फ्रेजाइल, जज़ाकअल्लाह, फ्रेजाइल का लफ्ज इस्तेमाल होता है उसके लिए, ठीक, सपोर्टिव काम हमने आपको बता दिया, सपोर्टिव काम भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन एक काम होता है नायब बनने वाला काम, ठीक है। इसकी मिसाल हम आपको देते हैं कि जैसे अगर हम जरा थोड़ा सा पीछे से शुरू करें, ठीक है, कि जैसे जो है ना वो मस्जिद है, एक बड़ी सी जो है ना वो मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर जो है ना वो बड़ा सा पिंडाल है, बड़ा सा उसका जो जो सहन वगैरह है, और उसका हॉल बहुत बड़ा है, और उसका वजू खाना बहुत बड़ा है। ये मस्जिद जो है ना वो आज नहीं बनी, बल्कि ये मस्जिद जो है ना वो पिछली जनरेशन में किसी ने बनवा दी थी, दो जनरेशन पहले, ये बादशाही मस्जिद फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये बादशाही मस्जिद जो है ये सदियों पहले जो है ना ये बहुत बड़ी सी जबरदस्त किस्म की एक मस्जिद बन गई। अब इस मस्जिद के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस मस्जिद में जो है ना आप ये काम कर सकते हैं कि आप वहां पे जाकर के नमाज पढ़ें, ठीक है ना, ये नमाज पढ़ना ये दीन है ना, ठीक है ना, दीन का काम ही कहेंगे इसको, ठीक है, नमाज पढ़ना। तो बादशाही मस्जिद में या इंडिया के अंदर जो है वो शाही मस्जिद है दिल्ली के अंदर, ठीक है, वहां पे जाकर के आप नमाज पढ़ें, माशाल्लाह दीन पे अमल कर रहे हैं, दीन कर रहे हैं, ठीक है, दीनी का काम कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, मस्जिद तो बन गई पीछे, ठीक है ना, पीछे किसी जनरेशन में मस्जिद बन चुकी, लोगों ने बना दी, उस वक्त जो है वो मस्जिद बनाने के अंदर एक इन्वॉल्वमेंट की जरूरत हुई होगी, उनको मदद की जरूरत हुई होगी, माली मदद की भी और फिजिकल मदद की भी, लेकिन वो सब हो चुका पिछली जनरेशन के अंदर। अब मस्जिद बन चुकी है, ठीक है। अब इस मस्जिद को के अंदर, मस्जिद की हिफाजत के लिए दो काम है। एक काम तो ये है कि मस्जिद का निजाम चलता रहे, है ना, पानी आता रहे मस्जिद के अंदर, मस्जिद की सफाई होती रहे, और मस्जिद के अंदर जो है ना वो बिजली वगैरह का इंतजाम होता रहे। आजकल के जमाने में बिजली के बगैर काम नहीं चलता, पंखे वगैरह चलते रहे, ठीक है ना। तो ये क्या है, मस्जिद को मेंटेन करने का काम है। उसी तरीके से मस्जिद को इबादत के लिए इस्तेमाल करने का काम, नमाज में पढ़ना वहां पे आकर के, ठीक है ना। तो ये भी तो दीनी का काम है ना, ठीक है। लेकिन ये मस्जिद की हिफाजत वाला दीन का काम कहलाएगा, ठीक है। ठीक है कि मस्जिद के अंदर एक तो आमाल जिंदा हो और मस्जिद की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं उनका जो है वो ख्याल रखा जा रहा होता है, ठीक है। और एक दूसरा भी काम है कि इस मस्जिद को जो है ना वो इशाअत दीन के लिए इस्तेमाल करना। इशाअत दीन के लिए इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि इस मस्जिद के अंदर जो है ना वो कोई अल्लाह का बंदा हो, ठीक है, आलिम दीन हो, वो आलिम दीन उस मस्जिद के अंदर जो है वो दीन के ऊपर यानी खिताब करता हो, ठीक है ना, लोगों को का मजमा इकट्ठा करता हो और वहां पर जो है वो यानी क्या कहते हैं, बयान करता हो, लोगों को जो है वो सिखाता हो दीन, ठीक है ना, लोगों को दीन की तरफ जो है वो बुलाता हो, लोगों को दीन की जो है वो यानी हकीकत बताता हो वगैरह, ठीक है। अच्छा, तो ये इशाअत वाला काम हो गया उस मस्जिद के अंदर, ठीक है ना। मस्जिद के जो बनाने का मकसद था यानी दीन, ठीक है, उस दीन की इशाअत का काम जो है वो ये अल्लाह का बंदा कर रहा है, ठीक है, जिसको आप शेख कह लें, मौलवी कह लें, मुफ्ती कह लें, जो भी कहें इनको, ये साहब जो है ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब लोग आते हैं तो उन लोगों के जो है वो आने जाने के अंदर भी तो एक एक्स्ट्रा इंतजाम की जरूरत पड़ती है ना, जिसको इज्तिमा कहते हैं, ठीक है ना। जो इज्तिमा हो रहा है तो उस इज्तिमा के अंदर भी तो भाई बहुत सारे सपोर्टिव कामों की जरूरत पड़ती है ना, ठीक है। बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो पार्किंग की जरूरत पड़ती है, पार्किंग मैनेजमेंट। भाई पहले कम लोग आ रहे थे, कभी नमाज पढ़ के यानी नमाज पढ़ के वापस चले जाते थे, तो उस वक्त पार्किंग की इतना कोई इशू नहीं होता था। लेकिन जब इज्तिमा होता है, कोई बड़ी गैदरिंग होती है, तो उस वक्त जो है वो पार्किंग मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये दीन के नशर व इशाअत का जो काम उस मस्जिद के अंदर हो रहा है यानी इज्तिमा जो मुनक्किद हो रहा है, तो उसमें आप पार्किंग के जो मैनेजमेंट में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, ये भी दीन की नशर व इशाअत में एक सपोर्टिव काम है, ठीक है ना। लेकिन जो असल काम है दीन की नशर व इशाअत का, वो पार्किंग मैनेजमेंट तो नहीं है, वो इज्तिमा के लोगों को जो है वो चाय पिलाना तो नहीं है, ठीक है ना, वो इज्तिमा के लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, रास्ता दिखाना तो नहीं है कि हाँ भी आप जो है वो इस रास्ते से जो है वो मस्जिद के अंदर एंटर हो जाएं, ये मर्दों का रास्ता है, ये खवातीन का रास्ता है। ये भी काम है, लेकिन ये सपोर्टिव काम है, ये असल काम नहीं है। असल काम क्या है कि जी इज्तिमा में जो दीन की बात करी जा रही है, दीन के ऊपर जो बयान किया जा रहा है, असल में तो ये सारा का सारा इज्तिमा उसके लिए किया गया है ना, ठीक है ना। उसके अंदर असिस्टेंट कौन है, वो है जो कि उन शेख का जो है वो नायब है, ठीक है, कि इन शेख ने जो है वो कोई दीन की बात करी, लेकिन अब जो है ना वो उनसे पहले या उनके बयान के बाद जो दूसरे लोग बयान करेंगे, जो दूसरे लोग दीन के मसाइल बताएंगे, जो दूसरे लोग जो है वो मारूफ मसाइल की बातें समझाएंगे लोगों को, असल काम तो ये है, असल काम तो ये है ना। जो लोग दीनी इज्तिमात में शामिल हो चुके हैं, तबलीगी इज्तिमा हो या जो है वो नक्शबंदी इज्तिमा हो या जो कोई चिश्ती इज्तिमा हो या किसी और बुजुर्ग का इज्तिमा हो, वो ये सारी बातें जानते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये है असल काम, ठीक है, कि बाकायदा शेख का जो है वो नायब बनना, ठीक है, और उनको जो है वो अपने इस काम के अंदर असिस्ट करना। ये वाला जो काम है ना, इस काम के लिए एक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, इस काम के लिए एक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, एक आपको एक एक्स्ट्रा जो है ना वो दर्जा सीखना पड़ता है, एक्स्ट्रा दर्जा सीखना पड़ता है। क्या मतलब कि मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ने के लिए तो आपने बस नमाज पढ़ना सीख लिया, वो आपने सीख लिया और आकर के नमाज पढ़ ली, ठीक ठीक है, मस्जिद की जो है वो पानी का इंतजाम और बिजली का इंतजाम, उसके लिए आपने बिजली का काम सीख लिया, पानी का काम सीख लिया, सफाई का काम सीख लिया, अब आप मस्जिद की सफाई भी कर सकते हैं, मस्जिद के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जो मस्जिद के अंदर इज्तिमा हो रहा है, दीन की नशर व इशाअत वाला काम, ठीक है ना, उसके अंदर जो सपोर्टिव काम थे, उन सपोर्टिव कामों के लिए आपने जो है वो थोड़ी बहुत आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है ना, जो आपने कहीं से एक्वायर करी हो, या आपके अंदर जो है वो पैदाइशी तौर पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज मौजूद हैं, तो आप जो है वो इज्तिमा की क्या करते हैं, मैनेजमेंट वगैरह के अंदर असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इज्तिमा में बाकायदा शेख के साथ बैठ करके बात करना, शेख के जो है वो यानी नायब बनना, ठीक है ना, ये वाला काम करने के लिए आपको एक एडेड लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन की जरूरत है। वो क्या है? सिर्फ दीन का इल्म हासिल करना, क्या ये काफी है? नहीं, बल्कि इसके लिए जो है ना वो आपको एक एतमाद की जरूरत है, एतमाद की जरूरत है कि शेख जो है ना वो आपके ऊपर इंटेलेक्चुअली एतमाद कर सकें, शेख आपके ऊपर एक आपकी अकल के ऊपर एतमाद कर सकें, आपके इंटेलेक्ट के ऊपर एतमाद कर सकें, और आपकी वफादारी के ऊपर एतमाद कर सकें, आपकी वफादारी के ऊपर एतमाद कर सकें, ठीक है ना। तब जो है ना दीन की नशरो इशाअत के अंदर आप उनके नायब बनने के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। दीन की नशरो इशाअत का जो असल काम है, उसमें शेख का नायब बनना, उसके लिए आप कब क्वालिफाई करते हैं? जब आप शेख के एतमाद के काबिल बनते हैं कि वो आपकी अकल पे एतमाद कर सके, वो आपके इल्म पे एतमाद कर सके, वो आपके हिल्म पर, कल बात हुई थी ना इल्म, हिल्म, हिकमत, है ना, जिहाद का फतवा देने से पहले इन सब चीजों की भी जरूरत होती है, इल्म, हिल्म, हिकमत, ठीक है ना। तो शेख आपके इल्म पर एतमाद कर सके, आपके हिल्म पर एतमाद कर सके, आपके हिकमत पर एतमाद कर सके, और आपकी वफादारी के ऊपर एतमाद कर सके, ठीक है, आपकी वफादारी के ऊपर एतमाद कर सके, कि ऐसा ना हो कि ये साहब जो है ना, जब इनको मैं मसनद के ऊपर बिठा दूंगा, जब इनको जो है वो मैं दीन का काम करने के लिए कह दूंगा कि जी जो जाओ लोगों को जो है वो अल्लाह के रास्ते के ऊपर बुलाओ और उनको जो है वो दीन की तबलीग करो, पता चला इन्होंने जा करके कोई गुमराही का काम भी शुरू कर दिया, इन्होंने जो है ना अपनी कोई डेढ़ ईंट की जुदी मस्जिद ही बना करके कोई अपना ही जो है ना वो यानी तरीका स्टार्ट कर लिया, नहीं, ठीक है। इतना एतमाद होना चाहिए कि शेख को इस बात का एतमाद हो कि नहीं, जब इनको जो है वो दीन का काम करने के लिए कहा जाएगा, इन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है, ठीक है ना। ये एतमाद हासिल करना, ठीक है ना, ये कहलाएगा कि दीन की नशरो इशाअत, जो कि असल में नबियों का काम है, दीन की नशरो इशाअत का काम, ठीक है ना, तबलीग दीन का काम, जो कि असल में नबियों को जिस काम के लिए दुनिया में भेजा गया था, इस काम के अंदर असिस्ट करने के लिए एतमाद जरूरी है, इसके बगैर ये काम नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, इसके बगैर ये काम नहीं किया जा सकता। हम क्या गलती कर जाते हैं? हम ये गलती कर जाते हैं कि हम जो है ना जिन लोगों को हम अच्छा समझते भी हैं, जिनके अकीदत के गुण भी गा रहे होते हैं, और ताकि दूसरों को भी जो है वो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, हम उनका एतमाद नहीं हासिल कर पा रहे होते हैं, हम उनका एतमाद नहीं हासिल कर पा रहे होते हैं, इस वजह से हम नीचे दर्जे के तो काम करने के काबिल हो जाते हैं, लेकिन ऊंचे दर्जे का जो असल काम है वो करने के लिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है ना, जो कि दीन का असल काम था, दीन की तबलीग, नशर इशाअत के अंदर हाथ बटाना, ठीक है ना। मन अंसारी इलल्लाह, मन अंसारी इलल्लाह, ये असल काम दीन की तबलीग और नशर इशाअत के अंदर हाथ बटाना, یہ اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ جو اعتماد ہے نا, یہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف اوپر نہیں کیا تھا, بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر اعتماد کیا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ خالی ون وے نہیں چل رہا ہوتا نا کہ جی نبی پہ اعتماد کرنا, آمننا و صدقنا, ہے نا, جیسے کہ ایمان لے آنا کیا ہے, نبی کے اوپر اعتماد کرنا کہ بھی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ سچ ہے, ہم اس کا اقرار کرتے ہیں, ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. بھئی یہ تو ایمان لانا ہے, نبی کے اوپر اعتماد کرنا یہ تو ایمان لانا ہے. نبی کے وارث کے اوپر اعتماد کرنا یعنی علماء کرام کے اوپر اعتماد کرنا یہ تو ایمان لانا ہے, یعنی اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا, ہے نا. علماء پر اعتماد کر کے آپ نے اپنے عقیدے کی حفاظت کر لی, آپ نے اپنے اعمال کی حفاظت کر لی کہ ہاں بھائی علماء کے اوپر اعتماد کیا, انہوں نے جو طریقہ بتایا سنت طریقہ اس کے مطابق اپنے اعمال کرنے شروع کر دیے, اس سے آپ کے اعمال کی حفاظت ہو گئی. لیکن ریسیپروکیٹ, واٹ از دا ادر وے اراؤنڈ, کہ کیا عالم بھی آپ کے اوپر اعتماد کر سکتا ہے, کیا نبی بھی آپ کے اوپر اعتماد کر سکتا ہے, کیا آپ اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں؟ نبی نے تو اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا نا کہ بندے جو ہیں وہ اب اس کے اوپر اعتماد کریں. علماء نے محنتوں کے ذریعے سے اور مجاہدوں کے ذریعے سے اور اپنے جو ہے وہ یعنی علم کے ذریعے سے, اپنے دین کی فکر کے ذریعے سے, دین کی محنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو تو اس قابل بنا لیا کہ آپ ان کے اوپر اعتماد کریں, آپ ان سے آ کے مشورے کریں, آپ ان سے جو ہے وہ بات پوچھتے ہیں, آپ ان سے جو ہے وہ یعنی سیکھتے ہیں چیزوں کو. لیکن کیا آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ آپ کے اوپر اعتماد کر سکے؟ یہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب تک آڈینس, صحابی, اسٹوڈنٹ, مرید, سالک, یہ سارے مختلف ورڈز ہیں کس کے لیے, جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے, ٹھیک ہے نا, سکھانے والے کے لیے نہیں, سیکھنے والے کے لیے, ٹھیک ہے نا. جب تک یہ لوگ اپنے آپ کو اعتماد کے قابل نہ بنائیں, اس وقت تک شیخ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا, ان کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا. اور جب تک شیخ ان کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا نا, اس وقت تک ان کو دین کی مدد کے اصل کام کے اوپر نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے, اچھا کیا سمجھ میں آیا بھائی؟ جو کہیں وہ کہیں, اپنے قول اور فعل کو اپنے سے ثابت کرنا. جی, یہ اعتماد کیسے حاصل ہوگا؟ نسبت کے ذریعے. نسبت کیا جلیبی کی دکان پہ ملتی ہے؟ پہلا سوال آپ کا صحیح تھا, دوسرا سوال جو ہے نا وہ رہنے دیں. یہ اعتماد کیسے حاصل ہوگا, یہ سوال ہے اصل. ٹھیک ہے نا, یہ جب آپ کو اعتماد حاصل ہو جائے گا نا تو آپ کی جو ہے وہ نسبت مضبوط ہو. ٹھیک ہے نا, تو اصل سوال یہ ہے, یہ اعتماد کیسے حاصل ہوگا. یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ٹھیک ہے نا, اصل سوال یہ ہے. اس کے لیے ہم نے آپ کو پتہ نہیں 20-25 منٹ جو ہے نا وہ جو تمہید باندھی ہے نا, وہ اسی لیے باندھی تھی کہ اب آپ یہ پوچھیں کہ یہ اعتماد کیسے حاصل ہوگا, ہم اس کے قابل. خواتین میں بھی انہوں نے بڑا صحیح سوال کیا آپ ہی والا, کہ اس کے قابل ہم کیسے خود کو بنائیں, اس کے قابل ہم یعنی اس اعتماد کے قابل ہم اپنے آپ کو کیسے بنائیں کہ شیخ ہمارے اوپر اعتماد کر سکے. ٹھیک ہے نا, اس کا بڑا سادہ سا اور آسان جواب جو ہے نا, یعنی وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز, سادہ سا آسان جواب کیا ہے اس کا, چلیں آپ بتائیں, اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں, سادہ آسان بالکل ون لائنر, ٹھیک ہے نا, ون لائنر کوشچن چاہیے جی, ون لائنر آنسر چاہیے جی, آپ بتا دیں. بہت آسان جواب ہے اس کا, پھر اس کی تفصیل ہم آپ کو بتا دیں گے. رابطہ شیخ, نہیں رابطہ شیخ میں تو ہم نے شیخ کی یعنی سر کھانا ہوتا ہے اکثر, مصیبت بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم رابطہ شیخ کر کے. شیخ नहीं, ये अपनी अकल ना इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अपना दीन की समझ इस्तेमाल करें, बाकी तफसील हम आपको बताएंगे। नहीं, रहने दें, रहने दें, छोड़ दें छोड़ दें। आप लोग बहुत सारे जवाब दे रहे हैं लेकिन आप सादा आसान वन लाइनर जवाब नहीं दे रहे। वन लाइनर सादा आसान जवाब ये है कि सहाबा, सहाबा को, सहाबा की जिंदगियों को सीखें, सहाबा की जिंदगियों को कहते हैं ना उर्दू के अंदर घोल के पी जाएं, घोल के पी जाएं। क्या किया सहाबा ने, कैसे थे सहाबा, ठीक है ना, उन्होंने क्या अच्छे काम किए, क्या उनसे गलतियां हुई और उन्होंने अपनी गलतियों की कैसे इसलाह करी, ठीक है, ये बंदा सीख ले और उसके ऊपर अमल कर दे, सहाबा की जिंदगी, ठीक है ना। वन लाइनर शॉर्ट सिंपल आंसर टू दिस इज सहाबा, ठीक है ना, बिकॉज सहाबा से बेहतरीन हमारे पास कोई मॉडल नहीं है कि जिसके ऊपर उनका शेख जो है ना वो ट्रस्ट करते थे, ठीक है ना। बस जबरदस्त, हमारे पास तो सहाबा, लेकिन अब जाहिर है सहाबा की जिंदगी को खोलना खोदना, उसके अंदर जो है वो सारी चीजें सीखना, ये तो अगर कोई करे तो उसके अंदर उसको भी बड़ा टाइम लगेगा। इस वजह से ना हम चंद बड़ी आसान सी सीधी सी जो हमारे अपने तजुर्बे के मुताबिक हमारे सामने आती रहती हैं मसले मसाइल, ठीक है ना, वो आपके सामने हम बयान कर देते हैं। ये देखें, ये जो एतमाद के काबिल हम नहीं बन रहे होते हैं ना, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह, ये अगर आप लिख लें, ठीक है, जो कि चाहते हैं कि भाई वो सही वाकई दीन का काम करें, ठीक है ना, अल्लाह की मदद करें और अल्लाह की मदद के मुस्तहिक बन जाएं, जो चाहते हैं कि वो अल्लाह के दीन की मदद करें और अल्लाह की मदद के भी मुस्तहिक बन जाएं, ताकि उनके दलद्दर दूर तो हो ना कम से कम, है ना, मुस्तकिल की जो एक टेंशन, मुस्तकिल की एक जो है ना वो दुनिया यानी जिंदगी की मुसीबत जो पाली हुई है, तो ये अल्लाह ताला उस मुसीबत को आसान कर दें हमारे लिए, दूर कर दें या आसान कर दें, दोनों तरीके होते हैं अल्लाह की मदद के, दूर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं बिल्कुल, या ये कि उसको सहना हमारे लिए बड़ा आसान बना देते हैं उसको, ठीक है ना। तो अल्लाह की मदद जो चाहते हैं तो वो इन पॉइंट्स को जरा सीख लें, ठीक है ना, लिख लें अपने पास, कि जिनको हमने अपना टीचर माना है, जिनको हमने अपना शेख माना है, कि भाई हाँ हमने इनसे सीखना है, हम इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हमने इनमें नहीं देखा कि जी जो है ना वो कोई अकीदे की खराबी इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर जो है वो कोई यानी किरदार की खराबी नहीं है, ठीक है ना, और जो है वो ऐसा भी यानी नहीं है कि जी उलमा के खिलाफ हैं और ये है वो, तो ठीक है, मतलब सही है, हम इनसे सीखते हैं, हम इनकी क्लासेस भी देते हैं, हम इनके बयान भी सुनते हैं, हम इनसे मशवरे भी करते हैं, ठीक है। अब इनके साथ जो है ना वो हम इनके साथ झूठ बोलना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, पहले तोलें और फिर बोलें, है ना, इनके साथ। बाकी झूठ की आदत पड़ी हुई है, सारी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं, वो वक्त लगेगा आपको छोड़ने में, है ना, वो तो आपकी तरबियत होगी, आपके तज़किया नफ्स होगा, तब कहीं जाकर के वो वाली बुराई खत्म होगी जो कि झूठ की बुराई होती है। लेकिन कम अज कम अपने शेख से जो है ना वो झूठ बोलना छोड़ दें, ठीक है ना, खरे बन जाए, है ना, सरासम सरासर मोम बन जा या दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, ठीक है, सरासर मोम बन जा या संग हो जा, एक हो जाओ, ठीक है ना। ये गिरगिट की तरह जो रंग बदलना जो है ना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, ठीक है ना भाई, अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, IQ दिया है, आपके अंदर बड़ी जो है वो यानी याददाश्त की ताकत है, आपके अंदर बड़े जबरदस्त किस्म के मोटर स्किल्स हैं, आपके अंदर बड़ी जहानत है, आप बड़े जो है वो किताबों को पढ़ लेते हैं, किताबों को समझ लेते हैं, भाई इस जहानत को जो है वो शेख को बेवकूफ बनाने के अंदर तो मत इस्तेमाल करो ना यार, ठीक है ना। ये जहानत जो कि तुम्हें दुनिया के अंदर बड़ा कमा भी, बड़ा अच्छा लिया, बड़ी इज्जत भी हासिल कर ली दुनिया की, और बड़ा बड़ा किताबें भी पढ़नी और बड़ी डिग्रियां भी हासिल करनी, इस जहानत को यार मतलब, बिकॉज झूठ बोलने के लिए जहानत की जरूरत पड़ती है ना, बेवकूफ इंसान जो है ना वो अगले बंदे को बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है ना, उसको आता ही नहीं है बेवकूफ बनाना, जो सीधे साधे सिंपलिस्टिक किस्म के लोग होते हैं ना, बेवकूफ किस्म के होते हैं या सादे किस्म के लोग होते हैं, वो किसी को झूठ नहीं, वो झूठ नहीं बोल सकते, उनको आते ही नहीं है झूठ बोलना। हाँ, वो उनके अंदर दूसरी बुराइयां होती हैं, अकड़ अकड़ दिखाना, आता जाता कुछ नहीं है, अकड़ दिखाते हैं, है ना, अपनी जिद दिखा, जिद के ऊपर अड़ जाएंगे, जो उनको उल्टा सीधा समझ में आएगा उसके ऊपर जिद करेंगे और जो है वो अकड़ जाएंगे। ये बेवकूफ किस्म के लोग ये हरकत करते हैं। लेकिन जो जहीन किस्म के लोग होते हैं ना, वो फिर झूठ बोलना ऐसे महारत के साथ झूठ बोलते हैं कि अगले बंदों को समझ में ही नहीं आता। लेकिन भाई शेख के साथ तो ये काम ना करो ना, उसको पता चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को तो पता चल रहा है ना कि क्या कर रहे हो। ठीक है, तो हम जो है ना अपनी झूठ की जो आदत है ना हमारी, खट्टी में जो पड़ी हुई है झूठ बोलना, है ना, पाकिस्तानी कौम तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कोई एक्सेल किसी ने नहीं किया होगा झूठ बोलने के अंदर। और दूसरे नंबर पे छोटा भाई हमारा इंडियन, ठीक है ना, पाकिस्तान बड़ा भाई, इंडिया छोटा भाई, एक दिन पहले पैदा हुआ था वो, एक दिन बाद पैदा हुआ था, इस तरह बड़ा भाई और छोटा भाई हो गए, ठीक है ना, वो हमारे पीछे पीछे झूठ बोलने के अंदर। ठीक है, तो खरे बन जाए, जब तक शेख के साथ खरे नहीं बनेंगे ना, शेख एतवाद नहीं कर सकता। ठीक है, फिर वही बात जो कि काफी लोगों ने जवाब में लिखी भी थी कि हम अकीदत भी है और जो है ना वो आगे पीछे भी घूम रहे हैं और जो है वो क्लासें भी सुन रहे हैं और बयान भी सुन रहे हैं और सब कुछ मशवरे भी कर रहे हैं, लेकिन अपना जो एक अकल है ना वो बहरहाल फौकियत, उसी को फौकियत है ना, मशवरे भी कर लूंगा, सुन भी लूंगा, नोट्स भी बना लूंगी और ये भी कर लूंगी, लेकिन करूंगी वही जो कि मेरी अकल कहती है, जो मुझे पसंद है, बस करना मैंने वही है। ठीक है ना, करना वही है जो कि मैं सही समझती हूँ या मैं समझता हूँ सही, बाकी मशवरे बेटे बेशक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको सही अकीदे वाला और सही किरदार वाला समझते हैं, मशवरा तो कर रहे हैं भाई। जिसको किरदार वाला सही नहीं समझते, किस जिसको बुरे अकीदे वाला समझते, उससे जो उससे तो जाके मशवरा ही नहीं करेंगे, उससे तो हम क्लासेस ही नहीं लेंगे, है ना। जिसकी बात समझ में आती है, जिसकी बात जो है वो हमें यानी रेलेवेंट लगती है, जिसकी बात से हमें कोई इल्म हासिल होता है, उसी की क्लासेस लेते हैं ना। जिससे कहीं कुछ नहीं हासिल हो रहा, उसकी क्लास में बैठे हुए क्यों है, पहली बात तो ये है, क्यों बैठे हुए उसकी क्लास के अंदर, जिससे आपको ना कुछ समझ में आ रहा है, ना कुछ जो है वो आपके जो है वो इल्म में इजाफा हो रहा है, ना आपके जो है वो अमल में कोई फायदा हो रहा है, उसकी क्लासेस आप ले क्यों रहे हैं, आपको तो लेनी ही नहीं चाहिए उसकी क्लास। भाई अगर ले रहे हैं तो भाई फिर अपनी अकल को जरा नीचे करें ना, ठीक है ना, और उनकी अकल को जरा ऊपर रखें। ठीक है, तो हम ये जो है ना ये वाली भी गलती करते हैं। पहली गलती क्या, उन्हीं से झूठ बोलते हैं जाकर, उन्हीं को जो है ना वो धोखा देने की कोशिश करते हैं, है ना, उन्हीं से जो है वो छुपा छुपा करके अपनी तरफ से जो है ना वो उल्टी सीधी हरकतें करने और उनको ऐसे दिखाना कि नहीं नहीं हम तो आपके कहने के ऊपर अमल कर रहे हैं, बस आप ही आप हैं और हम तो बस आप ही। ये जब तक ये करते रहेंगे ना, उस वक्त तक एतमाद के काबिल नहीं बन सकते, और जब तक एतमाद के काबिल नहीं बन सकते, उस वक्त तक दीन की जो असल मदद है ना, उस असल मदद में हम अपना हिस्सा नहीं डाल सकते। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के अंदर हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, ठीक है ना, कुछ पैसे लगा दिए हमने दीन के किसी काम के करने में, हमने अपना पैसा लगा दिया, हमने अपना थोड़ा सा वक्त लगा दिया, हमने अपने जो है वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी लगा दी, है ना, हमने जो है वो चाय पानी का इंतजाम कर लिया, हमने जो है वो दस्तरखान बिछाने का इंतजाम कर लिया, हमने जो है वो लाउड स्पीकर सिस्टम का इंतजाम कर लिया, पार्किंग का इंतजाम कर लिया, ये वाले काम में तो हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि इन कामों के ऊपर मैं जो है ना वो एतमाद की बहुत मसला नहीं होता। ठीक है, आप कर लें, अगर ज्यादा से ज्यादा आपने मैसअप भी कर लिया ना, तो कोई और आकर के वो मैसअप को ठीक कर लेगा, है ना, या बहुत सारे और भी लोग हैं वो भी जो है वो आपके साथ मिलके लगे हुए हैं, अगर आपने चाय पानी के अंदर कुछ गलती कर दी तो वो आपकी चाय पानी की गलती को दुरुस्त कर देंगे। लेकिन जो असल काम है दीन की अशाअत का, वो ऐसा नहीं है, वो इंतहाई फ्रेजाइल, इंतहाई डेलिकेट, इंतहाई सेंसिटिव काम है, वो सिर्फ और सिर्फ एतमाद वाले शख्स को दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी मसला। अच्छा, झूठ बोलना एक मसला, दूसरा मसला कि अपनी अकल को उनकी अकल के ऊपर फोकियत ही देते रहते हैं। ठीक है ना, अब उनको भी तो नजर आ रहा होता है ना, अल्लाह ताला भी दिखा देते हैं कि भाई सुन तो रही है रहा है, मुझसे आकर के इसने घंटों मशवरा तो कर लिया, लेकिन कर तो ये वही रही है, या कर तो ये वही रहा है जो कि इसको उस बात समझ में आई थी पहले भी, इसको जो समझ में आया था वही इसने करना है, तो फिर ये शेख साहब तो आपके ऊपर एतमाद नहीं करेंगे ना, ये तो मेरा टाइम जाया करने के लिए आता रहता है हर वक्त। ہر وقت جو ہے وہ میرا ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے, کرنا اس نے وہی ہے جو کہ اپنی مرضی ہے اس کی, میں کیوں کیسے اس کے اوپر اعتماد کر لوں, ٹھیک ہے نا, کیسے اس کے اوپر اعتماد کر لوں. صحیح ہے. اچھا ایک اور غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہی کہ جی ہم کیا کہتے ہیں, ہر جائی, ہر جائی نا, ہر جگہ جو ہے وہ ادھر بھی اور ادھر بھی اور ادھر بھی اور ادھر بھی, فوکس نہیں ہوتے, کمیٹڈ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. اس کو ہم آسان زبان میں ایک مثال سے سمجھا سکتے ہیں, ملٹیپل کشتیوں میں سوار, ملٹیپل کشتیوں میں سوار ہے نا. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس دو ہی ٹانگیں, اللہ کا شکر ہے دو ٹانگیں, تو ہم دو کشتیوں میں ہی سوار ہو سکتے ہیں فزیکلی. فزیکلی ہم صرف دو کشتیوں میں سوار ہو سکتے ہیں کیونکہ ٹانگیں ہمارے پاس دو ہیں. اگر ہمارے پاس چار ٹانگیں ہوتی ہیں نا, ہم چار کشتیوں میں ایک ساتھ سوار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن میٹافوریکلی اسپرچولی اسپیکنگ تو ہمارے پاس صرف دو ٹانگیں نہیں ہیں نا, بلکہ ہمارے پاس تو جتنے آپ اپنے دل کے ٹکڑے کریں ہے نا, 1000 ٹکڑے کر لیں تو 1000 ٹانگیں ہو گئیں, میٹافوریکل 1000 ٹانگیں ہو گئیں ہے نا. 100 ٹکڑے کر لیں تو 100 ٹانگیں ہو گئی, تو دل کے ٹکڑے کئی کیے, کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا, ٹھیک ہے نا. یعنی ہم ملٹیپل کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم ہر جائی بنتا ہے, ابھی ہر ایک کو یہ بات شاید سمجھ میں نہ آئے, لیکن جو کم از کم سالکین ہیں ان کو یہ بات اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر کب سمجھ میں آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا کہ جی ادھر سے بھی مشورے کر رہے ہیں, ادھر سے بھی مشورے کر رہے ہیں, ادھر سے بھی سن رہے ہیں, ادھر سے بھی سن رہے ہیں, شیخ کے ساتھ کمٹ نہیں ہو رہے. تو جب تک شیخ کے ساتھ آپ کمٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک شیخ بھی آپ کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا, اس وقت تک شیخ بھی آپ کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا جب تک آپ فلی کمٹ نہ ہو, ٹھیک ہے. تو جب تک وہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا, آپ کو دین کی اشاعت کا جو اصل کام ہے اس کے اندر شامل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. انہوں نے سوال کیا کہ لائنگ ول میک دا شیخ مسٹرسٹ اس, بٹ ہاؤ ڈز ہی نو دیٹ وی آر لائنگ, ہاؤ ڈز ہی نو دیٹ وی آر لائنگ. عالم الغیب ہوتا ہے شیخ؟ نہیں, عالم الغیب نہیں ہوتا شیخ, ٹھیک ہے نا. آپ چھپاتے ہیں لیکن اس کو پھر بھی پتا چل جاتا ہے. کیسے پتا چلتا ہے بھائی؟ اس کا جواب ویسے ہمیں آپ سے ہی پوچھنا چاہیے کہ کیسے پتا چلتا ہے شیخ کو. اچھا دوسری بات یہ کہ ہمارے جو دادا پیر تھے نا, حضرت مرشد عالم غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک بڑا مزے کا مصرع کہا کرتے تھے, ٹھیک ہے. وہ مصرع یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مرید 420 ہوتا ہے نا تو شیخ جو ہے وہ 840 ہوتا ہے. مرید 420 ہی سمجھتے ہیں نا, الو بنانا دوسروں کو, دھوکہ دینا. تو شیخ جو ہوتا ہے نا وہ 840 ہوتا ہے, یعنی 420 ملٹیپلائی بائی 2, ٹھیک ہے نا. وہ کیسے 840 ہوتا ہے بھائی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شیخ کو جو ہے وہ سبب بنایا نا اصلاح کا, ٹھیک ہے نا. اصلاح کر اللہ تعالیٰ شیخ کو استعمال کر کے جو ہے وہ سالک کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی جب اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا سبب اس کو بنایا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو یوز کرتے ہیں, تو بھائی اب اس کو کچھ دیتے بھی تو ہے نا, رائٹ. مثال کے طور پر منسٹری آف ہیلتھ ہے, منسٹری آف ہیلتھ جو ہے نا اس کا کام یہ ہے کہ ملک کے اندر جو لوگ ہیں ان کی ہیلتھ اچھی رہے. تو اب منسٹری آف ہیلتھ لوگوں کی ہیلتھ کو انشور کیسے کرتی ہے؟ کیا منسٹری آف ہیلتھ کا کوئی جو منسٹر صاحب ہیں وہ خود جا کر کے جو ہے وہ لوگوں کی کا علاج کرتے ہیں, خود جا کر کے لوگوں سے جو ہے وہ ان کے سمپٹمس پوچھتے ہیں, پھر ان کو جو ہے وہ ڈائگنوز کرتے ہیں, پھر ان کو دوائی دیتے ہیں ان کا؟ منسٹر صاحب تو نہیں کرتے نا یہ کام. منسٹر صاحب کیسے کرتے ہیں؟ ڈاکٹرز کو بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹرز کی کلینکس بناتے ہیں, پھر ڈاکٹرز کو جو ہے وہ کلینکس کے اندر جو ہے وہ اپوائنٹ کرتے ہیں, وہ ڈاکٹرز یہ والا کام کرتے ہیں. اب منسٹری آف ہیلتھ جو ہے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو تو بھیج دیا کہ جی آپ جا کر کے جو ہے نا لوگوں کے علاج معالجے کا کام کریں, لیکن ڈاکٹر صاحب کو جو ہے نا جن چیزوں کی ضرورت تھی علاج کرنے کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں دی. مثال کے طور پر اسٹیتھوسکوپ چاہیے تھا ڈاکٹر صاحب کو, اسٹیتھوسکوپ منسٹری نے کہا نہیں نہیں آپ بغیر اسٹیتھوسکوپ کے کام کریں. ڈاکٹر صاحب کو جو ہے نا وہ الٹرا ساؤنڈ مشین چاہیے تھی, منسٹری آف ہیلتھ نے کہا نہیں نہیں سوری ہم آپ کو الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں دے سکتے, آپ بغیر الٹرا ساؤنڈ مشین کے کام کریں, ہے نا. آپ ڈائگنوز جو ہے نا وہ بغیر الٹرا ساؤنڈ کے خود سے ڈائگنوز کریں کسی طریقے سے, ٹھیک ہے نا. آپ کو جو ہے نا وہ میڈیسنس کی ضرورت ہے, نہیں سوری ہم آپ کو میڈیسنس نہیں دے سکتے, ہے نا. تو اب یہ جو ڈاکٹر ہے یہ کیسے جا کر کے علاج کرے گا؟ تو بھائی منسٹری کا یہ کام ہے کہ وہ ڈائگنوسس کے لیے اور علاج کے لیے جن چیزوں کی ڈاکٹر کو ضرورت ہے وہ چیزیں بھی دینا ڈاکٹر. تو یہ جو تزکیہ نفس کی جو محنت ہے, یہ جو دین کی اصلاح کی محنت ہے, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कौन है, कौन है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ? अल्लाह रब्बुल इज्जत ना, है ना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो असल में तज़किया तो अल्लाह ने करना होता है, ठीक है ना, अल्लाह ताला का ये काम है। लेकिन अल्लाह ताला शेख को सबब बनाते हैं, जब शेख को सबब बना दिया तो अब उसको इल इक्विप्ड, बगैर किसी इक्विपमेंट के, बगैर नेसेसरी जो है वो असबाब के, तो शेख साहब को जो है वो भेजिए, हाँ भी जाओ जाकर के दीन का काम करो, हमारी तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, हमारी तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो क्या अपने डॉक्टर को जो है वो इक्विप करेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपने दीन का काम करने वालों को इक्विप करते हैं ना, और उनको जिस तरीके से फिर उनकी मदद होती है, क्योंकि वो तो असल काम कर रहे हैं ना, वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुह, राइट। तो ये जो शेख दीन का काम कर रहा है, क्या लयंसुरन्नल्लाहु का ये मिसदाक नहीं है? अगर ये मिसदाक नहीं है दीन की मदद करने का, और लयंसुरन्नल्लाहु का अगर ये जो है वो मिसदाक नहीं है, तो फिर कौन है मिसदाक? नाम बताएं, कौन है फिर मिसदाक लयंसुरन्नल्लाहु का, है ना? तो अल्लाह ताला मदद नहीं करते उसकी, जरूर अल्लाह ताला का कुरान झूठा है ना उस बिल्ला। अल्लाह ताला ने अपने कुरान के अंदर ये जो आयात हैं वो ऐसी नाजिल करती हैं, एवं की जैसे पंजाबी में कहते हैं, एवं में नाजिल करती हैं। क्या समझ रखा है हमने इस दीन को, इस कुरान को, राइट? ऐसी वो खाम खाम अल्लाह ताला ने छोड़ दी है बातें कुरान के अंदर अपनी, ना जिस तरह से कोई छोटा बच्चा नहीं होता वो छोड़ता रहता है इधर उधर की, अल्लाह ताला ने भी नाउज बिल्ला अपने कुरान के अंदर बातें छोड़ दी हैं बस, है ना। अल्लाह डिड नॉट रियली मीन इट, ही जस्ट डिड इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कहते हैं ना इंग्लिश के अंदर, राइट? तो नहीं, ऐसा नहीं है ना, कुरान सच्चा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सच्चे हैं, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन का काम करने वाले उलमा और मशायख है ना, वो इस आयत का असल मिसदाक तो वही है, ठीक है, तो हर जाई बनते हैं। अच्छा, एक और इसके अंदर बात समझ लें कि जी दो कश्तियां, ठीक है ना, दो कश्तियां दोनों एक ही रुख में जा रही हैं, मंजिल की तरफ जा रही हैं दो कश्तियां, ठीक है ना, वो दोनों कश्तियां मंजिल की डायरेक्शन में जा रही है ना, तो वो मंजिल तक पहुंच जाएंगी कि नहीं पहुंचेंगी? पहुंच जाएंगी ना, ठीक है ना। लेकिन उन कश्तियों में एक सवार ऐसा है कि जिसने अपनी एक टांग जो है वो एक कश्ती में फंसाई हुई है, और दूसरी टांग जो है वो दूसरी कश्ती में फंसाई हुई है, फंसाई हुई नहीं है बल्कि रखी हुई है, फंसाना तो फिर वो कश्ती जो है वो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा अगर यूं हुई ना आपस में ऐसी दूर हो गई, ये तो बीच में से चिर जाएगा, ठीक है ना। अगर इसने वाकई फंसा ली अपनी टांग, इधर भी फंसा ली, तो ये तो बीच में से चिर जाएगा। जहां कश्तियां थोड़ी सी दूर हुई एक दूसरे से, जा तो मंजिल ही की तरफ रही हैं, लेकिन थोड़ी सी दूर हुई, ये बंदा तो बीच में से चिर जाएगा। और अगर इसने अपनी टांगे फंसाई भी नहीं है, बस रखी हुई है, तो क्या होगा, कश्तियां जरा सी ऐसे ऐसे इधर से हुई, डायरेक्शन उनकी वही है मंजिल की तरफ, लेकिन जरा से ऐसे ऐसे हुई, इसने इन साहब ने क्या करना है या इन साहिबा ने क्या करना है, ठड़ाम से नीचे पानी के अंदर, ठीक है ना, इन्होंने पानी के अंदर गिर जाना है। क्या ये मंजिल तक पहुंच जाएंगे इस तरह से? नहीं, कश्ती तो आगे चली जाएगी, कश्ती तो मंजिल तक पहुंच जाएगी, ये साहब या साहेबा ये तो पानी में डूब जाएंगे ना, ये तो मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे ना, ठीक है ना। इसी वजह से हमारे मशायख बहुत ताकीद के साथ ये बात समझाते हैं, हर जाई मत बनो। अगर तुम हर जाई बनोगे, दीन की मदद करना तो दूर की बात, तुम मंजिल तक वैसे ही नहीं पहुंच सकोगे, दीन की मदद तो दूर की बात है, तुम तो मंजिल तक ही नहीं पहुंच सकोगे, तुम तो रास्ते में ही जो है ना वो दरिया बुर्द हो जाओगे, रास्ते में ही दरिया बुर्द हो जाओगे। बात समझ में आ रही, ठीक है। उसी तरह से हम और भी बड़े फनी फनी किस्म के मिस्टेक्स करते हैं कि जी हम जो है ना वो जिनको हमने अपना रहनुमा बनाया, जिनको जो है वो शेख साहब कहते हैं और हजरत कहते हैं और हजरत जी कहते हैं, उनकी बात जो है ना वो हम सुनते ही नहीं या तवज्जो से नहीं सुनते। उन्होंने एक लाइन का जो है व्हाट्सएप मैसेज भेजा होता है, उसी को हम समझ करके उसके ऊपर अमल नहीं कर पा रहे होते, है ना, उसके यानी उसके खिलाफ या तो कर रहे होते हैं, और ऐसे खिलाफ कर रहे होते हैं कि ये नहीं कि जानबूझ के खिलाफ कर रहे हैं, बल्कि जस्ट बिकॉज वी डिडंट पे अटेंशन, हमने अटेंशन ही नहीं, यानी तवज्जो ही नहीं दी उसके मैसेज के ऊपर, हमने एक दो लाइन का जो 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 रिक्वेस्ट थी या वो हमने पढ़ी ही नहीं, ठीक है ना, और जो है वो हमने कुछ और ही कर दिया उसके ऊपर, या तो अमल ही नहीं किया या हमने कोई और ही अमल कर लिया। भाई अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप अमल नहीं कर पा रहे, तो कम से कम एक एक्सक्यूज तो कर सकते हैं ना कि मेरे अनफॉर्चुनेटली, या तो मेरे मेरे औकात बहुत इस वक्त टाइट हुए हुए हैं, बहुत स्केड्यूल मेरा ऐसा हुआ, वैसे वैसे अमल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, या ये कि मुझे तौफीक नहीं मिल रही, आप दुआ कर दीजिए कि मैं आपकी बात पे अमल कर सकूं, है ना, इसकी तौफीक, ठीक है, तौफीक के लिए दुआ तो मांग के रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ना, लेकिन इग्नोर कर देना, या ये कि कह कुछ रहे करना कुछ और कर देना, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी 2-3 दिन पहले साजिश ने जो मैसेज किया, ठीक है, कि जी जो लोग ऑलरेडी दीन एसेंशियल्स ग्रुप के ऊपर हैं या आल इंसाले ग्रुप के ऊपर हैं, वो रमजान तफसीर का ग्रुप मत ज्वाइन करें। कितना बड़ा वो मैसेज था, छोटा सा मैसेज था ना, छोटा सा था ना, तो लोगों ने उसको पढ़ा, और उसके बाद अगला मैसेज जो है ना, जो कि उससे मुत्तसिल भेजा गया था, जिसके अंदर के रमजान तफसीर ग्रुप ज्वाइन करने के लिंक्स थे, और वो लिंक्स इसलिए थे ताकि आप दूसरों को वो लिंक्स भेज सकें कि वो उस पर क्लिक करके जाए, वो रमजान तफसीर ग्रुप का हिस्सा बन जाए। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे खवातीन व हजरात, उन्होंने पिछला मैसेज जो है वो समझा नहीं, इग्नोर कर दिया, वॉट एवर, उन्होंने जो है ना वो रमजान तफसीर ग्रुप के लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है भाई। कोई 2 दिन पुराना मैसेज भी नहीं था, उसी वक्त मुत्तसिल मैसेज भेजा गया था कि अगर आप ऑलरेडी हमारे इस ग्रुप के ऊपर मौजूद हैं, जिसके ऊपर आपको ये मैसेज मिल रहा है, आप मत ज्वाइन करें रमजान तफसीर का ग्रुप। लेकिन नहीं, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने जो है वो ज्वाइन करने के बाद छोड़ा, या तो उनको दूसरों ने मलामत करी कि भाई क्या आपको, आपने पढ़ा नहीं मैसेज, डांट पड़ेगी, तो भाई जल्दी से छोड़ो, उन्होंने ज्वाइन करके भी छोड़ा, और बहुत सारे अभी तक नहीं छोड़ा, ठीक है। क्या मतलब, हम तवज्जो से छोटी छोटी बात को भी नहीं पढ़ रहे होते, नहीं सुन रहे होते, 1 घंटे की तफसीर क्लास से हमें क्या क्या फायदा हासिल होगा। इसी वजह से जो है ना वो हमारे जो सियासतदान हैं, है ना, वो हमें उल्लू बनाए चले जा रहे हैं, उल्लू बनाए चले जा रहे हैं, और हम उल्लू बने चले जा रहे हैं, क्यों, इसलिए कि हमने उनकी बात भी कोई तवज्जो से नहीं सुननी होती कि उन्होंने कैसे कैसे हमें उल्लू बनाया, कैसे कैसे उन्होंने अपनी बात जो है वो यू टर्न करके चेंज करी, कैसे उन्होंने कल कुछ कहा, आज कुछ कहा, परसों वो कुछ कहेंगे, है ना। हमें कुछ, हमें तो पे अटेंशन करना ही नहीं है किसी की बात के ऊपर, हमें किसी की बात भी तवज्जो से नहीं सुननी, हमने तो बस अपने विम्स एंड डिजायर्स के ऊपर बस जिंदगी गुजारनी है, ठीक है ना। इसी वजह से शैतान भी हमें उल्लू बनाए चला जा रहा है, और शैतान जैसे लोग जो इस दुनिया में होते हैं वो भी हमें उल्लू बनाए चले जा रहे हैं, बने चले जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई तवज्जो देना कब शुरू करेंगे चीजों के ऊपर ना, कब्र में जाकर के जब सारी दुनिया से हमें काट दिया जाएगा, राइट, जमीन और आसमान से हमें काट दिया जाएगा, हम अकेले अपनी कब्र में बैठे होंगे, लेटे होंगे, राइट, उस वक्त जाकर के फिर हम फोकस करेंगे चीजों के ऊपर, क्या करके आए हैं, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया। कब्र में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी सिवाय वो सांपों और बिच्छुओं के, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी कब्र के अंदर, तो फोकस तो वहां भी नहीं कर पाएंगे फिर जाकर, है ना। तो भाई फोकस, तवज्जो, इस तवज्जो के बगैर जो है ना वो हम कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते कि हम दीन की मदद करने वाले, सही मानों में दीन की असल मदद करने वाले लोगों में शामिल हो सकें, और फिर हम अल्लाह ताला की जो यकीनी मदद है उसके मुस्तहिक बन सके, ठीक है। चलें, बहुत देर हो गई क्लास खत्म करने में, तो हम आपसे चाहते हैं वापस दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।